एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपने भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो काफी जटिल है, लेकिन आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हम मार्टिन लंड की चर्चित किताब व्हाइटनेस यानी श्वेतता के गहरे विचारों की पड़ताल करेंगे। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नस्ल और पहचान असल में क्या है।
नमस्कार, और ये विषय सिर्फ मतलब किताबों या बहसों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम अपने आसपास की असमानताओं को देखें, सामाजिक न्याय की चुनौतियों को या यहाँ तक कि वैश्विक राजनीति और संस्कृति को भी समझना चाहें तो श्वेतता की अवधारणा पर गौर करना जरूरी हो जाता है।
हाँ, ये बात तो है।
लुंड की किताब हमें दिखाती है कि ये सिर्फ त्वचा के रंग का मामला नहीं है, ये तो शक्ति, इतिहास और समाज के ढांचे से जुड़ा एक गहरा मुद्दा है। ये समझने का एक लेंस है, एक नजरिया कि कैसे कुछ समूह सामान्य और कुछ अन्य मान लिए जाते हैं।
तो चलिए सबसे पहले लेखक मार्टिन लुंड के बारे में थोड़ी बात करते हैं। कौन है ये और इनकी बात सुनना क्यों महत्वपूर्ण है?
हाँ, मार्टिन लुंड स्वीडन के माल्मो विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रोफेसर हैं। कुछ स्रोत उन्हें अमेरिकी अध्ययन, पॉपुलर कल्चर और क्रिटिकल रेस थियोरी यानी नस्ल और शक्ति का जो आलोचनात्मक अध्ययन होता है उसके विशेषज्ञ विद्वान और सांस्कृतिक आलोचक भी मानते हैं।
अच्छा, और उनके काम में क्या खास है, मतलब उनका नजरिया अलग कैसे है?
हाँ, कई दिलचस्प बातें हैं। एक तो वो अक्सर अमेरिका केंद्रित बहसों से थोड़ा हटकर देखते हैं, एक यूरोपीय या कहें अंतर्राष्ट्रीय नजरिया लाते हैं।
ये जरूरी है।
हाँ, क्योंकि नस्ल और शक्ति की संरचनाएं हर जगह एक जैसी नहीं होती। दूसरी बात, वो कई अलग अलग फील्ड्स जैसे शिक्षा, समाजशास्त्र, कल्चर स्टडीज, इन सब के ज्ञान को एक साथ लाते हैं।
अच्छा, मतलब कई कोणों से देखते हैं मुद्दे को।
बिल्कुल, इससे हमें एक ज्यादा पूरी तस्वीर मिलती है। और एक और खास बात जो मुझे लगती है वो है उनकी मुश्किल अकादमिक विचारों को सरल भाषा में समझाने की कला।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है ऐसी किताबों के लिए।
किताब भारी भरकम नहीं लगती, और वो ये भी मानते हैं कि वो खुद एक श्वेत यूरोपीय पुरुष है जो इस विषय पर लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आलोचनात्मक दूरी बनाए रखते हैं। ये ईमानदारी उनके काम को और पुख्ता करती है।
दिलचस्प। तो ये तो हुई लेखक की बात, अब आते हैं किताब पर। इसका मतलब मूल विचार क्या है, लुंड क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि किताब श्वेतता को कोई कुदरती या बायोलॉजिकल चीज नहीं मानती।
अच्छा,
जैसे आंखों का रंग होता है वैसा नहीं।
हाँ,
ना ही ये इसे सिर्फ किसी एक जाति या समूह की पहचान मानती है।
तो फिर क्या मानती है?
लुंड इसे एक सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से बनाई गई व्यवस्था के रूप में देखते हैं।
बनाई गई?
हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जो शक्ति से, विशेष अधिकारों से और क्या सामान्य या डिफॉल्ट माना जाता है उससे जुड़ी है। ये इतिहास में बनी और समय के साथ बदलती रही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम श्वेत या गोरा होना कहते हैं वो सिर्फ चमड़ी का रंग नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े हुए सामाजिक मतलब अधिकार और उम्मीदें हैं।
हाँ, काफी हद तक यही। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि श्वेतता अक्सर एक अदृश्य या बिना निशान वाली श्रेणी की तरह काम करती है।
अदृश्य मतलब?
मतलब ये वो स्टैंडर्ड बन जाती है जिसके सामने बाकी सभी नस्लीय और जातीय समूहों को देखा जाता है, परखा जाता है, परिभाषित किया जाता है और अक्सर उन्हें अलग, कम या हाशिए पर महसूस कराया जाता है। लुंड का मकसद इसी अदृश्य लगने वाली चीज को दिखाना है, ये बताना है कि ये कैसे बनी और आज भी समाज पर, हमारी अर्थव्यवस्था, कानून, संस्कृति, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीकों पर कैसे असर डाल रही है।
यहाँ ये समझना भी जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा था, कि ये किताब श्वेत लोगों के खिलाफ नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसी व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा रहे।
हाँ, ये उस पूरी व्यवस्था का विश्लेषण है जो जाने अनजाने में नस्ली भेदभाव और ऊंच नीच को बनाए रखती है। ये समझने की कोशिश है कि पावर कैसे काम करता है।
बहुत सही कहा। चलिए अब किताब के कुछ और गहरे विचारों में उतरते हैं। पहला जो विचार दिमाग में आता है वो है श्वेतता का आविष्कार। ये सुनने में ही थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना कि श्वेतता का आविष्कार हुआ।
हाँ, ये आइडिया ही अपने आप में काफी बड़ा है। लुंड कहते हैं कि श्वेत होने की ये जो धारणा है ये हमेशा से नहीं थी। इसे इतिहास के एक खास मोड़ पर खास जरूरतों के तहत गढ़ा गया। इसका सीधा संबंध यूरोपीय उपनिवेशवाद से है, एनलाइटनमेंट के दौर में जो इंसानों को बांटने की सोच थी उससे है, और खास तौर पर अटलांटिक पार जो दास व्यापार था उसकी आर्थिक जरूरतों से है।
हाँ, मतलब जब बड़े पैमाने पर अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया गया तो उन्हें अलग और कमतर साबित करने के लिए एक विचारधारा की जरूरत पड़ी, नस्ल की विचारधारा।
और इसे सिर्फ विचारों तक नहीं रखा गया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून, धर्म और यहाँ तक कि विज्ञान का गलत इस्तेमाल करके, जिसे साइंटिफिक रेसिज्म कहते हैं, यानी विज्ञान का चोला पहनाकर नस्लीय भेदभाव को सही ठहराना, इस विचार को मजबूती दी गई।
इसका कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे शुरुआती औपनिवेशिक कानूनों में जो यूरोप से आए बंधुआ मजदूर थे और जो अफ्रीकी गुलाम थे, उनके बीच जानबूझकर कानूनी और सामाजिक दूरी बनाई गई
ताकि वो एकजुट ना हो पाए।
बिल्कुल, ये सोचना ही कितना अजीब है कि इंसानों के बीच ऐसी दीवारें खड़ी की गईं, वो भी जानबूझकर।
हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बहुत शक्तिशाली विचार है, संपत्ति के रूप में श्वेतता, व्हाइटनेस एज प्रॉपर्टी।
हाँ, यहाँ लुंड अमेरिकी कानूनी विद्वान चेरिल हैरिस का जिक्र करते हैं। हैरिस का तर्क है कि ऐतिहासिक रूप से अमेरिका में श्वेत होना सिर्फ एक पहचान नहीं थी।
तो क्या था?
ये अपने आप में अधिकारों, फायदों और मौकों का एक पूरा बंडल बन गया, जैसे नागरिकता का पूरा अधिकार, अच्छी शिक्षा तक पहुंच, कहाँ रहना है ये चुनने की आज़ादी, कानून से मिलने वाली सुरक्षा, एक तरह की संपत्ति।
संपत्ति मतलब जिसका मूल्य हो।
हाँ, इसे सचमुच एक मूल्यवान संपत्ति की तरह देखा गया, जिसकी रक्षा की जानी थी, जिसे विरासत में दिया जा सकता था।
कोई उदाहरण है इसका रोजमर्रा की जिंदगी से?
हाँ, सोचिए, अमेरिका में रेडलाइनिंग जैसी नीतियां थीं, सरकार और बैंक मिलकर नस्ल के आधार पर कुछ इलाकों को खतरनाक मान लेते थे और वहां लोन देने से ही मना कर देते थे।
अच्छा,
इससे अश्वेत समुदायों के लिए घर खरीदना या बिजनेस शुरू करना लगभग नामुमकिन हो गया था। ये संपत्ति के रूप में श्वेतता का एक ठोस उदाहरण है।
या फिर वो GI बिल वाली बात, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लौटे अमेरिकी सैनिकों की मदद के लिए कानून था, घर खरीदने, पढ़ाई करने, कारोबार शुरू करने में मदद।
हाँ, लेकिन इसके फायदे श्वेत सैनिकों को जितनी आसानी से मिले, अश्वेत सैनिकों को उतनी आसानी से नहीं मिले, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भेदभाव चलता रहा।
तो मतलब कानून कागज पर तो निष्पक्ष था पर अमल में नहीं।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे व्यवस्थाएं ऊपर से ठीक दिखते हुए भी अंदर से असमान परिणाम दे सकती हैं, और ये सिर्फ कानूनी या आर्थिक मामला नहीं था।
अच्छा,
लुंड बताते हैं कि कैसे श्वेतता धीरे धीरे आधुनिकता, तर्क, प्रगति, यहाँ तक कि पूंजीवाद के विचारों के साथ जुड़ गई।
तो इसका नतीजा क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ कि जो श्वेत नहीं था उसे अक्सर पिछड़ा, अतार्किक या अविकसित मान लिया गया। ये सोच आज भी कई जगहों पर दिख जाती है ना?
हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं उस विचार पर जो शायद सबसे ज्यादा पेचीदा है, अदृश्य मानक और विशेषाधिकार, अनमार्क्ड नॉर्म एंड प्रिविलेज।
हाँ,
लुंड कहते हैं कि श्वेतता की ताकत का एक बड़ा हिस्सा इसके अदृश्य होने में है। इसे अक्सर सामान्य, डिफॉल्ट या मानक इंसान मान लिया जाता है।
हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे हवा। हम सांस लेते हैं पर हमें उसका एहसास नहीं होता जब तक वो कम ना हो जाए या खराब ना हो। इसी तरह जो समाज में मानक या नॉर्मल माने जाते हैं, उन्हें अक्सर अपने विशेषाधिकार, अपने फायदे दिखाई नहीं देते।
पेगी मैकिंटोश ने इसे अदृश्य थैला कहा था।
इनविजिबल नैपसैक, हाँ, यानी अनजाने में मिलने वाले फायदों का एक थैला जो श्वेत समझे जाने वाले लोग अपनी पीठ पर लेकर चलते हैं पर उन्हें उसका वजन महसूस नहीं होता।
इसके उदाहरण तो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखते हैं। हाँ, जैसे वो फ्लैश कलर्ड यानी त्वचा के रंग का क्रेयोन या बैंडेड।
हाँ, वो असल में सिर्फ एक खास तरह की त्वचा के रंग का होता है पर उसे सामान्य त्वचा का रंग मान लिया जाता है।
या फिल्मों और कहानियों में जब तक बताया ना जाए मुख्य किरदारों को अक्सर श्वेत ही मान लिया जाता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे श्वेतता डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है।
और यहीं पर वो कलर ब्लाइंड यानी रंग अंध विचारधारा की दिक्कत सामने आती है। हाँ, वो जो कहते हैं कि मैं रंग नहीं देखता, मैं सबको इंसान मानता हूँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, नेक लगता है पर लुंड जैसे आलोचक कहते हैं कि ऐसा करने से हम उस अदृश्य मानक और उससे जुड़े फायदों और नुकसानों की सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। ये असल में मौजूदा असमानताओं को ढकने का काम कर सकता है।
और ये सिर्फ सामाजिक और आर्थिक ढांचे का सवाल नहीं है, लुंड इसके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी ध्यान दिलाते हैं।
हाँ बिल्कुल, श्वेतता सिर्फ एक सामाजिक स्थिति नहीं है, ये एक ऐसी पहचान भी है जिसमें लोगों का भावनात्मक निवेश होता है।
भावनात्मक निवेश मतलब?
मतलब लोग इससे जुड़ाव महसूस करते हैं, और जब इस व्यवस्था, इसके इतिहास और इससे जुड़े विशेषाधिकारों पर सवाल उठाए जाते हैं या उनका सामना कराया जाता है, तो अक्सर बहुत जटिल और तीव्र भावनाएं पैदा होती हैं।
जैसे?
जैसे अपराध बोध, शर्मिंदगी या फिर बचाव की मुद्रा में आ जाना, इनकार करना, गुस्सा होना। रॉबिन डियांजेलो इसी को व्हाइट फ्रिजिलिटी कहती हैं।
व्हाइट फ्रिजिलिटी, हाँ सुना है इसके बारे में।
हाँ, यानी जब श्वेत लोगों को नस्लीय तनाव या अपने विशेषाधिकारों का सामना करना पड़ता है, तो वे अक्सर असहजता, बचाव या गुस्से जैसी तीव्र भावनाओं से प्रतिक्रिया करते हैं। इससे फिर सार्थक बातचीत मुश्किल हो जाती है।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसी से जुड़ा W.E.B. Du Bois का वो श्वेतता का मनोवैज्ञानिक वेतन वाला विचार भी है।
हाँ, साइकोलॉजिकल वेज ऑफ व्हाइटनेस।
Du Bois ने कहा था कि अमेरिका में गरीब श्वेत मजदूरों को भले ही आर्थिक रूप से ज्यादा फायदा ना हो, लेकिन उन्हें नस्ल के आधार पर अश्वेतों से बेहतर होने का एक मनोवैज्ञानिक एहसास कराया गया।
हाँ, और ये एहसास उन्हें व्यवस्था से जुड़े रखता था और अलग अलग नस्ल के मजदूरों को एकजुट होने से रोकता था।
और एक और बात जो लंड बताते हैं वो है श्वेतता की कमाल की अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी।
हाँ, ये व्यवस्था कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जब इसे चुनौतियां मिलती हैं, जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ, तो ये खत्म नहीं होती, ये अपना रूप बदल लेती है।
रूप बदल लेती है, कैसे?
जैसे खुलेआम नस्ली भेदभाव की जगह कलब लाइन नस्लवाद आ गया, यह सांस्कृतिक भिन्नताओं के नाम पर भेदभाव होने लगा। ये नए तरीके ऊपर से तो ठीक लगते हैं, पर अंदर ही अंदर वही पुरानी संरचनाएं बनाए रखते हैं।
ये तो और भी मुश्किल बना देता है इसे पहचानना।
बिल्कुल।
तो अगर ये व्यवस्था इतनी जटिल है, अदृश्य है और इतनी अनुकूलनीय है, तो इसे चुनौती कैसे दी जाए? क्या लोंड इसका भी कोई रास्ता सुझाते हैं?
हाँ, किताब का आखिरी हिस्सा इसी पर है, श्वेतता को चुनौती देना। लुंड श्वेत वर्चस्व के खिलाफ जो प्रतिरोध का लंबा इतिहास रहा है उसे देखते हैं। इसमें रंग के लोगों, पीपल ऑफ कलर के नेतृत्व वाले आंदोलनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
और अकादमिक स्तर पर?
हाँ, वो क्रिटिकल व्हाइटनेस स्टडीज जैसे अकादमिक क्षेत्रों के उदय की बात करते हैं, जहाँ विद्वान खुद श्वेतता की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं।
और इसमें श्वेत लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? क्या वो भी कुछ कर सकते हैं?
बिल्कुल। और लुंड और इस क्षेत्र के अन्य विचारक मानते हैं कि श्वेत लोग भी इस व्यवस्था को बदलने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, नस्लवाद विरोधी सहयोगी बनकर, एंटी रेसिस्ट अलाइज बनकर। यहाँ लक्ष्य श्वेत लोगों को मिटाना या उन पर दोष मढ़ना नहीं है, लक्ष्य है श्वेतता को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में खत्म करना जो प्रभुत्व, असमानता और अमानवीयकरण पैदा करती है और अंततः सभी को नुकसान पहुंचाती है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो लुंड की किताब से कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं? मेरे लिए तो सबसे पहले और बुनियादी बात यही है कि श्वेतता कोई प्राकृतिक या जैविक सच्चाई नहीं है।
हाँ,
ये एक सामाजिक और ऐतिहासिक रचना है, और अगर इसे बनाया गया है तो इसे बदला भी जा सकता है ना, इसे चुनौती दी जा सकती है।
बिल्कुल। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसकी शक्ति का स्रोत, इसका अदृश्य होना, इसका सामान्य या मानक मान लिया जाना। जब तक हम इस सामान्य पर सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक इसके भीतर छिपी शक्ति और विशेषाधिकार को नहीं देख पाएंगे।
तीसरा, ये सिर्फ हवा हवाई विचार नहीं है। जैसा हमने संपत्ति के रूप में श्वेतता वाले हिस्से में देखा, इसके ठोस भौतिक और आर्थिक परिणाम होते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये तय करता है कि किससे मौके मिलेंगे, किससे नहीं, किसकी जिंदगी आसान होगी, किसकी मुश्किल।
चौथा, ये एक व्यवस्था है, एक सिस्टम, सिर्फ व्यक्तिगत रवैये या पहचान का मामला नहीं।
सही कहा। कोई व्यक्ति निजी तौर पर भले ही नस्लवादी न हो, लेकिन अगर वो ऐसी व्यवस्थाओं का हिस्सा है, स्कूल, दफ्तर, कानून, जो नस्लीय आधार पर असमान परिणाम देती हैं, तो वो अनजाने में उस व्यवस्था को बनाए रखने में भागीदार बन जाता है।
और पांचवा, जैसा हमने भी बात की, ये व्यवस्था स्थिर नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है, नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल लेती है।
हाँ, इसीलिए इसे बदलने के लिए लगातार जागरूकता और कोशिश की जरूरत है।
और अगर हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ के देखें, तो ये विचार हमें अपने आसपास की दुनिया को अलग तरह से देखने में मदद कर सकते हैं ना?
हाँ बिल्कुल। क्या हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारी संस्थाओं में, हमारी बातचीत में कौन से मानक सामान्य मान लिए गए हैं, किसके नजरिए को ज्यादा महत्व दिया जाता है, किसकी कहानियां ज्यादा सुनाई जाती हैं। ये सवाल हमें अपनी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों पर सोचने को मजबूर करते हैं।
इस किताब में वाकई कई ऐसे विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, अगर कुछ यादगार विचारों को उनके सार के रूप में कहना हो।
हाँ, जैसे एक ये है, श्वेतता नस्ल की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि तटस्थता के भेस में छिपी नस्लीय शक्ति की उपस्थिति है।
गहरा है, मतलब जो चीज सामान्य या तटस्थ दिखती है जरूरी नहीं कि वो शक्ति से मुक्त हो, उसका सामान्य होना ही उसकी शक्ति हो सकती है।
बिल्कुल। एक और विचार है, नस्ल को समझने के लिए हमें केवल हाशिए पर पड़े लोगों के अनुभवों को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि शक्ति के केंद्र पर भी आलोचनात्मक नजर डालनी चाहिए।
यानी अगर हम नस्लीय असमानता को समझना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उन लोगों को नहीं देखना होगा जो इसका शिकार हो रहे हैं।
हाँ, बल्कि उस व्यवस्था और उस पहचान यानी श्वेतता को भी समझना होगा जो इस असमानता के केंद्र में है।
और ये बात भी बहुत जरूरी है, श्वेतता को चुनौती देना श्वेत व्यक्तियों में अपराध बोध पैदा करने के बारे में नहीं है, ये अनर्जित लाभ की एक प्रणाली को खत्म करने के बारे में है जो अंततः सभी के लिए मानवता को विकृत करती है।
हाँ, ये साफ करता है कि मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि एक ज्यादा न्यायपूर्ण और मानवीय समाज बनाना है।
अंत में एक विचार जो व्यवस्था की ताकत पर जोर देता है, श्वेत वर्चस्व के लिए ये जरूरी नहीं कि श्वेत लोग सचेत रूप से वर्चस्ववादी हों, इसके लिए केवल उन व्यवस्थाओं में उनकी भागीदारी की आवश्यकता होती है जो वर्चस्ववादी परिणाम उत्पन्न करती हैं।
हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि सिर्फ अच्छी नीयत रखना ही काफी नहीं है, हमें उन व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाना होगा जिनमें हम जीते और काम करते हैं।
तो इन सब गहरी बातों का हम व्यवहारिक जीवन में क्या करें, इन्हें जानने के बाद क्या बदला जा सकता है?
देखिए, सबसे पहला कदम तो शायद व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है,
अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने की कोशिश करना।
हाँ, और अगर हमें समाज में कुछ अनर्जित लाभ मिलते हैं तो उन्हें स्वीकार करना, ये समझना कि समाज में क्या सामान्य माना जाता है और क्यों, और जब नस्ल जैसे मुश्किल मुद्दों पर बात हो तो अपनी भावनाओं जैसे बचाव की मुद्रा या असहजता को समझना भी जरूरी है।
बिल्कुल। दूसरा, हम मीडिया और संस्कृति को ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देख सकते हैं।
हाँ, कौन सी कहानियां बार बार दोहराई जाती हैं, किन लोगों को हीरो की तरह पेश किया जाता है, क्या विविधता सिर्फ दिखाने के लिए है या सचमुच अलग अलग नजरियों को जगह मिलती है।
तीसरा, हम सामाजिक और राजनीतिक बहसों में छिपे हुए नस्ली संकेतों या पूर्वाग्रहों को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो आप्रवासन पर बहस हो, आरक्षण पर या राष्ट्रीय पहचान पर।
और कार्यस्थल या शिक्षा के क्षेत्र में भी ये विचार काम के हैं, क्या कल्चर फिट या प्रोफेशनलिज्म के नाम पर हम अनजाने में किसी एक खास समूह के तौर तरीकों को ही बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हमारे पाठ्यक्रम या नीतियां सचमुच समावेशी हैं? इन सवालों को पूछना और बदलाव के लिए काम करना भी इन विचारों का एक प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो सकता है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए एक बड़ी सीख ये रही है कि सतह के नीचे देखना कितना जरूरी है। जो चीजें हमें सामान्य या प्राकृतिक लगती हैं, अक्सर उनके पीछे एक लंबा इतिहास और शक्ति की राजनीति छिपी होती है। श्वेतता का विश्लेषण हमें यही दिखाता है।
हाँ, और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात शायद इस व्यवस्था की अनुकूलन क्षमता रही है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है जिससे इसे पहचानना और बदलना और भी मुश्किल हो जाता है।
सही कहा।
ये याद दिलाता है कि समानता और न्याय के लिए संघर्ष एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें गहरी समझ और लगातार कोशिश दोनों जरूरी हैं।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं, इस समझ के साथ हम अपने आसपास की दुनिया, अपनी संस्थाओं और अपनी बातचीत को किस नई नज़र से देख सकते हैं, और उस नज़र से देखने के बाद हम क्या अलग करने का चुनाव कर सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कथर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।